ओम शांति। एक ब्रिटिश कंपनी अपने कुछ सेल्स मैनेजर्स को अफ्रीका में भेजती है ये पता लगाने के लिए कि अगर जूतों की कंपनी वहां खोली जाए तो उसका मार्केट पोटेंशियल, वो कंपनी कितनी चलेगी। तो ऐसे मुख्य रूप से दो सेल्समैन नियुक्त किए जाते हैं। वो लोग वहां जाते हैं और दोनों ही समाचार लाते हैं। पहला कहता है कि उन आदिवासी जगहों पर जहां हम गए वहां पर कोई भी जूते पहनता नहीं, इसलिए देयर इज नो मार्केट पोटेंशियल। इसलिए वहां पर अगर कंपनी खोली जाए तो बिल्कुल नहीं चलेगी। दूसरा सेल्समैन भी जाता है और वो कहता है वहां पर मार्केट पोटेंशियल बहुत अच्छा है क्योंकि वहां पर कोई भी जूते नहीं पहनता। पहला कहता है मार्केट पोटेंशियल इज वेरी पुअर और नो मार्केट पोटेंशियल बिकॉज नोबडी वेयर्स शूज। दूसरा कहता है मार्केट पोटेंशियल इज वेरी गुड बिकॉज नोबडी वेयर्स शूज। ये क्या है, क्या कहेंगे इसे? दो परिस्थिति एक ही है, देखने वाले दो व्यक्ति है। पहला कहता है अगर यहां जूतों की कंपनी खोली जाए तो बिल्कुल नहीं चलेगी क्योंकि यहां कोई जूते पहनता ही नहीं, क्या मतलब है कंपनी खोलकर। दूसरा कहता है यहां बहुत चलेगी क्योंकि यहां कोई जूते पहनता ही नहीं। दृष्टिकोण कैसा है, नजरिया कैसा है, वृत्ति कैसी है, एटीट्यूड कैसा है, पर्सपेक्टिव कैसा है, व्यू पॉइंट कैसा है, उस पर सब कुछ निर्भर है। एक ऐसा ही उदाहरण ओल्ड टेस्टामेंट पुराना करार बाइबल में आता है। एक राजा है इसराइल का, साउल या सोल जिसको कहते हैं, वो सोल जो राजा जो होता है उसकी निरंतर लड़ाई दिखाई है फिलिस्टीन से। और एक बार जब इस तरह लड़ाई होती रहती है तो फिलिस्टीन की तरफ से एक बहुत ही विशाल काय व्यक्ति आता है, गोलायत जिसका नाम होता है बहुत, और वो सबको मार देता है राक्षस जैसा। तो इधर इज़राइल में बहुत चिंता हो जाती है अब कैसे लड़ा जाए। तो वो गांव होता है, वहां पर एक जेसी नाम का व्यक्ति होता है जिसके सात बेटे होते हैं, और इधर सोल राजा को भगवान जैसे कहता है कि उन सातों में से एक राजा बनेगा। और वो वहां जाता है और देखता है एक छोटा सा लड़का है 15 साल का, डेविड, गडरिया चरवाहा शेफर्ड भेड़ चराने वाला, और उसको ये संकेत मिलते हैं कि यही राजा बनेगा और उसको वो ले आता है। और वो छोटा सा लड़का कहता है मैं इस गोलायत से लड़ूंगा। तो राजा कहता है तुम कैसे लड़ पाओगे, तुम बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता। वो कहता है मैं लड़ूंगा। तो राजा कहता है अच्छा तो तुम लड़ो, परंतु ये कवच ले लो, मुकुट ले लो। वो कहता है मुझे ना कवच की जरूरत है ना मुकुट की जरूरत है, भगवान ही मेरा कवच है, ईश्वर मेरा कवच है। वो कहता है मेरी तलवार तो ले लो, वो कहता है मुझे तलवार की भी आवश्यकता नहीं, मैं तो अकेले घूमता हूं जंगलों में अपने भेड़ों को लेकर और शेर और भालू से, वो परमात्मा ही मेरी रक्षा करता है। तो तब राजा मानता है और वो जाता है और उसको चुनौती देता है, वो इतना बड़ा गोलियत, इस छोटे से बालक के पास एक गुलेर, गुलेल, कैटापल्ट, बस उतना ही होता है। वो जाता है 5 पत्थर लेकर और 1 पत्थर से उसको मारता है और वो गिर जाता है। यहां पर एक संवाद है इस घटना से पहले। सब लोग उसको कहते हैं वो इतना बड़ा है गोलायत कि उसको मारा ही नहीं जा सकता। तब डेविड कहता है वो इतना बड़ा है कि उस पर लगाया हुआ निशान चूक ही नहीं सकता। उस पर लगाया हुआ निशान इसलिए नहीं चूक सकता क्योंकि वो बहुत बड़ा है। बाकी लोग कहते हैं उसे मारा नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत बड़ा है और वो उसे मार गिराता है और उस गोलायत की हार हो जाती है। ये जो कहानी है डेविड एंड गोलायत विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है। फिर डेविड राजा बनता है, किंग डेविड। बहुत सारे भजन बाइबल के लिखे हुए डेविड और सोलोमन के लिखे हुए हैं। तो ये 2 घटनाएं थी, दोनों में परिस्थिति सभी के लिए समान थी, व्यक्ति भी समान थे, स्थान भी समान था, परंतु सोच, दृष्टि, वृत्ति हर एक की कैसी थी, अलग अलग थी। कल की अव्यक्तवाणी, दूसरा भाग। पहले भाग की चर्चा कल रात्रि हो गई, दूसरा भाग है किस पर, वृत्ति पर। ये कौन सी मुरली है, किस साल की मुरली है? वो तो फर्स्ट पार्ट, जो सेकंड पार्ट है महावाक्य लिखे हुए विशेष महावाक्य, ये कहां से है? अव्यक्त महावाक्य कहां से है? सितंबर 2015 का पत्र पुष्प, उसमें विशेष 2 काम दिए गए सेवा के, 2 होमवर्क दिए तपस्या वर्ष के लिए। उसमें जो सेकंड होमवर्क है उसमें 15 पॉइंट्स है, उन 15 पॉइंट्स में से 9 पॉइंट्स निकालकर ये मुरली बनी है, टुकड़ा टुकड़ा निकालकर। इसलिए आप देखेंगे वो एक फ्लो कुछ भी नहीं है उसमें, ऐसा लगता है ये यहां से लिया, ये वहां से लिया, ये टुकड़ा यहां से, और बहुत सारा रिपीटेशन है, बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही है। नहीं तो अव्यक्त मुरली में एक फ्लो होता है पूरा, दूर बाप आया है बड़े थे बड़ा, बड़े थे बड़े दिल से, बड़े थे बड़े बच्चों से मिलने, ये बड़ा दिन है, उमंग उत्साह का, उत्सव का, खुशी का दिन है, फिर क्रिसमस ट्री, वो सारा एक फ्लो है, वह एक ही मुरली है। पर ये जो है सेकंड पार्ट, विशेष महावाक्य, ये पत्र पुष्प में से अव्यक्त मुरलियों से जो छाट छाट के मुरलियां है उससे निकाले हुए होमवर्क है, जो कि सेंटरों पर भेजे जाते हैं। तो ये सितंबर मास का अव्यक्त पुष्प, पत्र पुष्प है, उसमें से निकाला हुआ है। तो ये जैसे कहा उसमें 15 पॉइंट्स है और उसमें से 9 पॉइंट्स लिए गए, तो हम ऐसे 9 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। कहां एक पूरा होता है और कहां एक चालू होता है, क्योंकि उसमें 5 पैराग्राफ बना दिए है 9 पॉइंट्स को, तो वो समझ में नहीं आता है। तो एक एक पॉइंट, उसका एक एक अभ्यास और उसका चिंतन। तो क्या क्या कहा पहले आप बताएंगे, फिर पॉइंट्स चालू करेंगे। क्या क्या कहा इस मुरली में, अव्यक्त तो महावाक्य में कल ही चली है, वायुमंडल बनाने की सेवा करो और अपने शुद्ध संकल्प रखो और बहुत सारी बातें हैं, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो और व्यर्थ और निगेटिव नहीं होना चाहिए और बेहद की दृष्टि और जब चाहो जहां चाहो पहुंच सकते हो, कब वृत्ति से और वृत्ति से दृष्टि और दृष्टि से सृष्टि और सेकंड के दिल की मुस्कुराहट से क्या से क्या देना है और क्या था, याद में रहेंगे तो माया आ नहीं सकती, ये सेकंड मुरली में है और क्या था, मुरली याद रखनी है, वैराग्य की वैराग वृत्ति हाँ और यदि तुम बेहद की, अगर तुम में बेहद की वृत्ति नहीं वैराग की, तो संसार की आत्माओं को सुख और शांति नहीं मिल सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती और क्या था कल की मुरली, भ्रष्टाचार अत्याचार बढ़ रहा है, अग्नि, ये जो वाक्य था ये उस पत्र पुष्प का भी नहीं है, ये एक और दूसरी मुरली से लिया हुआ है 95 की, और उसमें से भी आधा ही लिया हुआ है, उसमें भी आधा छोड़ दिया गया है, शिथिल पर छोड़ दिया, उसके आगे कुछ और था, वहां यहाँ कुछ और जड़ डाल दिया और संकल्पों को शुद्ध बनाओ और वो नहीं, पार्ट वन नहीं पार्ट टू, दृष्टि वृत्ति और स्थिति बेहद की रखनी है, साधना सच्ची दिल से करनी है और कौन सी साधना फैलाओ, बेहद की वैराग वृत्ति फैलाओ और योगी और योग्य बनाने की सेवा करो, दो कार्य करो और मूल फाउंडेशन पक्का करो। कल की मुरली में फर्स्ट पार्ट में क्या कहा था, संग ये जो कल्पवृक्ष का कल्पवृक्ष है उसके फाउंडेशन में कौन है, हम है, फाउंडेशन में हम है, हम श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ आत्मा है, हम महान थे महान आत्माएं हैं, हम परदादे दादे परदादे हैं, हम डबल पूज्य आत्माएं हैं, हम कितने मीठे हैं, किशमिश जैसे, किशमिश से भी मीठे और ये तो चलो ये तो पहला भाग था और दूसरे भाग में और क्या क्या था, वृत्ति पर कई बार चर्चा कर चुके हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लासेस में, इसलिए वृत्ति क्या है और वृत्ति क्या होनी चाहिए और संसार वृत्ति के लिए क्या कहता है, पतंजलि योग सूत्र में वृत्ति के क्या पांच प्रकार, बहुत सारी चर्चा कहीं और की है, इसलिए वो चर्चा आज नहीं करेंगे, सीधा हम वृत्ति शब्द जो है अर्थात वृत्ताकार वर्तुल ऑर्बिट, यहां पर इस मुरली में वृत्ति शब्दों को हटा दो और उसको संकल्प से रिप्लेस कर दो, सीधा वृत्ति इज सम टोटल कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड वृत्ति, चेतना में जो कुछ है, कई कई जगह पर वृत्ति की यह परिभाषा दी है, ढेर सारी परिभाषा है, उसमें से एक परिभाषा है कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना में जो कुछ भी भरा है मॉडिफिकेशंस डिस्टर्बेंसेस या जो भी, वो सब कुछ वृत्ति कहा है, तो यहाँ हम पर बाबा जिस तब जब जब वृत्ति कहते हैं बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है, हम सिंपल रिप्लेस कर देंगे, वृत्ति शब्द जहाँ है उसको हटा दो और संकल्प रख दो खत्म, तो 9 पॉइंट्स है टोटल। सबसे पहला है वृत्ति, पहला ही पॉइंट है वृत्ति। वृत्ति तेज रॉकेट के जैसी है, वृत्ति से वायुमंडल बदलता है, वृत्ति से वातावरण परिवर्तन होता है, वृत्ति वातावरण में फैलती है और दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन हो जाती है। इसलिए तुम्हें अपनी वृत्ति में अर्थात संकल्पों में शुभ भाव और शुभकामनाएं रखनी है। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये फर्स्ट पॉइंट। तो संकल्पों में शुभ भाव शुभकामना, संकल्प बहुत तीव्र है, बहुत फास्ट है, संकल्प रॉकेट से भी तेज है। अभी अभी श्रेष्ठ संकल्प और अभी अभी गिरावट वाले संकल्प, अभी अभी ऊंचाई अभी अभी नीचे, इतनी तेज स्पीड है संकल्पों की। सुबह सुबह व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ सोच रहा है, ये नहीं करूंगा, ये मेरे लिए बहुत खराब है, मेरे लिए नुकसानकारक है ये संस्कार, ये संकल्प, ये आदत, ये व्यवहार। अमृत वेला पूरा 3 घंटा उस पर योग, मुरली, फिर चिंतन, और जैसे ही कर्म क्षेत्र पर में उतरता है और जिसके लिए उसने नहीं सोचा था वही कर बैठता है और फिर पश्चाताप करता है कि इतना सब करने के बाद में भी नहीं हो रहा है, क्या करे अब, किससे पूछे, क्योंकि जिससे पूछने वाले और जो उत्तर वो देने वाला है वो पहले ही पता है, वो उत्तर देगा क्या ज्यादा से ज्यादा, वो तो हमको पता ही है। और फिर ब्राह्मण आत्मा निराशा में चली जाती है धीरे धीरे, क्योंकि एक संस्कार है, एक आदत है जो छूट नहीं रही है। सब कुछ करने के बाद कहां से आ जाती है समझ ही नहीं आता है। इसके लिए अपने विचारों को समझना है, अपने अपनों को डांटना नहीं है कि ऐसा क्यों हो गया, मैंने ये क्यों कर दिया, समझना है उसको बड़े प्यार से, क्यों ऐसा किया उसने। और वो किया जैसे ब्राह्मण जीवन में गलती छोटी होती है, पर जो तीव्र पुरुषार्थी आत्मा होगी उसको पश्चाताप, गिल्ट कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा होगा, और वो गिल्ट उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। फिर काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, संपूर्ण पवित्रता की तुमको प्रतिज्ञा करनी है। जब तक स्थापन नहीं कर लेते अपना राज, विष नहीं पिएंगे, ये सारी प्रतिज्ञा है। और जब इसमें से कुछ टूटता है तो इतना बड़ा गिल्ट कॉन्शियसनेस आ जाता है। एक तो वो पाप हो गया छोटा या बड़ा जो भी, पर उसके साथ जुड़ा हुआ जो फ्रस्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, और ये उसको डुबो देता है और आगे फिर पुरुषार्थ नहीं करने देता। इसके लिए जहां पर अपराध भाव है वहां पुरुषार्थ नहीं हो सकता, स्वयं को भी माफ कर देना है। जो कुछ हुआ है छोटा मोटा उनको परछाई समझ के छोड़ देना है, नहीं तो वो डराती रहती है, डरावना रूप धारण करके हमारा पीछा करती रहती है। वो परछाई या वो पाप, वो अपराध, वो गुनाह, वो श्रीमत का उल्लंघन। इसके लिए थिंक देम एज शैडोज, छाया थी आई और चली गई, खत्म। और फिर देखना है ये जो हुआ इसका ट्रिगर क्या था, जरूर कुछ ना कुछ उत्तेजना उसको मिली है, उत्तेजक आया है, उसकी वजह से ये ट्रिगर हुआ। अब काम उन ट्रिगर्स पर करना है, उस कर्म जो पाप हुआ उस पर नहीं, उसको छोड़ दो। जो ट्रिगर आया, टीवी था, मोबाइल था, इंटरनेट था, सोशल मीडिया था, नेट था, क्या था, कुछ तो होगा, कोई व्यक्ति था, कोई संबंध था, कोई स्थान था, कोई समय था, क्या आया बीच में जिसने ट्रिगर कर दिया और हमने वो पाप कर दिया और फिर उसके बाद में पश्चाताप किया। तो पहली बात है संकल्पों में शुभ भावना भरना अपने प्रति, पहले अपने प्रति शुभकामना, अपने प्रति पहले फिर दूसरों के प्रति, इस संकल्प को समझना बहुत फास्ट ट्रैवल करते हैं। अभी अभी मुरली सुनी, जैसे कोई माता है घर से सब विरोध है, मधुबन में आई, रोटी की सेवा एक मास से रोटी बना रही है और एकदम वैराग है, और अचानक एक दिन उसको अपने बेटे की याद आ जाती है और आंसू बहना चालू। अभी तक वैराग के संकल्प थे, वैराग की बातें थी, और अचानक से जैसे ही बेटे की याद आई और आंसू बहना चालू हो गए, इमोशनल। अब वो ज्ञान योग सब उड़ गया उस समय के लिए। फिर अपने आप को समझाया, इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, तर्क लॉजिक फीका पड़ जाता है उसके लिए। इसके लिए जो आदत हमको नई बनानी है या जिससे हमें छूटना है, उससे इमोशनली इन्वॉल्व हो जाना है उस एक्ट में। जैसे किसी को झूठ बोलने की ही आदत पड़ गई है, या पहले से है, वो यहां पे भी चालू है, उसे सत्य का चिंतन करना है, क्या क्या नुकसान हो रहा है झूठ का, उससे चिंतन करना है, सत्य के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो जाना है। जो नई आदतें हैं उनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो जाना, खुद को संकल्प देने हैं। क्यों बुरे संकल्प, विकार के, पाप के, निगेटिव संकल्प आ रहे हैं? स्वयं के प्रति पहले पॉजिटिव, फिर दूसरों के प्रति पॉजिटिव। तो वृत्ति तेज रॉकेट है, वृत्ति वायुमंडल में फैलती है, वृत्ति वातावरण को परिवर्तन करती है, वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामनाएं हो, वृत्ति अर्थात संकल्प पर काम करना है। और एक बात, हमारे जो संकल्प है वो इतने सूक्ष्म है कि वही फैल रहे हैं वायुमंडल में, वातावरण में, और हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हम निर्माण कर रहे हैं। दुख सुख, यहां तक कि शरीर की बीमारियां भी हमारी रचना है। हमने जरूर आह्वान किया होगा, मन में जरूर कभी लगा होगा कुछ तो, और उसका हमने आह्वान किया। पहली पॉइंट है वृत्ति, दूसरा है बेहद, नो नेगेटिव नो वेस्ट। बाबा ने कहा यदि कोई नेगेटिव है और हम उसे बदलना चाहते पर हमारे ही अंदर नेगेटिव है, तो जब तक हमारे अंदर नेगेटिव है हम उसके नेगेटिव को बदल नहीं सकते। बेहद में रहना है, हदों में नहीं रहना है। जैसे कोई है, दो लोग, युगल है, एक ज्ञान में एक नहीं है, तो जो ज्ञान में नहीं है और जो ज्ञान में है, ज्ञान में जो है वो जो नहीं है उसको लाना चाहता है, चाहती है, परंतु जो ज्ञान में नहीं है उसका व्यवहार इतना अच्छा नहीं है। इसके लिए जो ज्ञान में है उसके लिए शुभ भावना तो है, परंतु मन ही मन में नेगेटिविटी भरी है उस आत्मा के प्रति, कि इसकी ये आदत ठीक नहीं है, ये शराब भी पीते हैं, ये भी करता है, ये वो भी करता है। और दूसरी तरफ वो ज्ञान में नहीं है, वो ज्ञान में आ जाए फिर उसको बताओ क्या उपाय है वो ज्ञान में आ जाए। उसके ज्ञान में आने के लिए बाधा तुम हो, तुम्हारे नेगेटिव संकल्प। वो देव कुल की आत्मा है, ऐसा हमने क्यों नहीं देखा उसको, या क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्यों हमारा ही मोह है उसमें? हमारा मोह कारण है कि वो आत्मा ज्ञान में नहीं आ रही। हमारी नफरत नेगेटिविटी अंतर मन में समाई हुई कारण है वो ज्ञान में नहीं आ रही। संकल्प फैलते हैं, में दिखाया है, एक राजा और एक किसान दोनों मित्र है बचपन से। राजा तो बहुत बड़ा है, किसान जो है वो लकड़ियां काटता है। एक दिन उसके मन में विचार आता है कि मेरी लकड़ियां लोग लेते नहीं है, लकड़हारा भी है, किसान खेती भी करता है। सोचता है ये राजा अगर मर जाए ना तो मेरे पास जो अच्छी अच्छी लकड़ी है वो बिक जाएगी इसको जलाने के लिए। ऐसा उसके मन में विचार आता है। और राजा उधर सोचता है, राजा के मन में भी उसी समय विचार आता है कि मेरे गांव में सभी अच्छे हैं, ये जो एक किसान है और जो मेरा दोस्त है इसके तरफ से मुझे कुछ फायदा नहीं है, ये इसका कोई संतान नहीं है, पत्नी के साथ रहता है और ये जो टैक्स कर जितना देना चाहिए उतना देता भी नहीं, अच्छा हो कि ये मर जाए। तो किसान वो लकड़हारा राजा से मिलने आता है और उसको ये बता देता है कि मेरे मन में ये आया, और राजा भी उसको बताता है मेरे मन में भी ये आया। दोनों के मन में, एक ने उसके लिए निगेटिव सोचा तो जिस उसके मन में भी उसके लिए निगेटिव चला। हम यहां बैठ के सोचते हैं किसी के लिए कि ये बहुत निगेटिव आत्मा है, इसके इसमें ये अवगुण है, इसको समझ में नहीं आता है, किसी का मोबाइल बजता है, ये योग में सोते ही है हमेशा। हमारा मन अज्ञात रूप से निगेटिव भावनाओं से भरा है और हम चाहते भी है कि वो बदल भी जाए। हम उसको इमर्ज भी करते और सकाश भी देते और माफ करते और माफी मांगते, सब करते उसके साथ, पर उसी के लिए सबसे ज्यादा निगेटिविटी है और हमें ही नहीं पता कि हमारे मन में उसके लिए निगेटिविटी छिपी हुई है। इतनी भयंकर निगेटिविटी छिपी हुई है, हमने अंदर से उसको होपलेस कर डायग्नोसिस करके रखा है उसका, और ऊपर से हम ही उसके डॉक्टर बनकर उसी का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये जो सबकॉन्शियस है, ये जो अवचेतन है, जो अंतर मन है, इसमें क्या है उसको एक्सप्लोर करना है। टॉर्च लेके घुसना पड़ेगा, अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं देते वहां, और जिस समय जहां पर टॉर्च फोकस करोगे वो दिखाई देगा, उतना ही दिखाई देगा। इसके लिए एक अभ्यास जो रोज योग में करना है, अपने संपूर्ण जीवन को देखना, क्योंकि बहुत सारी एरियाज, कॉर्नर्स, क्रिवाइसेस, बहुत सारे ऐसे कोने हैं, अंधकार है जहां पर, और वहीं से प्रॉब्लम आ रही है, वही स्रोत है, सोर्स है, जहां से ये भाव प्रकट हो रहा है एकदम से निगेटिव वाला, और वो गिरा देता है। तो बेहद संकल्पों को ऊंचा उठाना है। कल बाबा ने कहा तुम लाइट व्हाइट एंजल्स हो, इस ट्री के, ये झाड़ जो है क्रिसमस, इसके डेकोरेशन हो, लवली लकी स्टार्स हो, ऊंचे ऊंचे सम्मान दिए, बेफिक्र बादशाह हो, महावीर हो, मायाजीत हो, संतुष्ट मणि हो, गुलदस्ते में गुरुहानी गुलाब हो। बाप ने तुमको, तुम तो जब भाग रहे थे तुमको पकड़ा, तुम तो उधर थे, तुमको पहचाना, तुमको लाया, अपना बनाया। दुनिया तुम्हारी वैल्यू को नहीं जानते, बाप जानते हैं। ये तुमको नशा रहना चाहिए कि बाबा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। यूके ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, विदाई के समय तुम यहां जो करते हो वो वहां होता है, यहां दृष्टि वहां दर्शन। कितनी दीवारें तुम लांग कर आए हो, सभ्यता की, मान्यता की, धर्म की, नॉलेज की, देश की, भाषा की। साथ गीत है ना, मैं आई रे तेरे लिए सारा जग छोड़कर, गीत है फिल्मों का, मैं आई रे तेरे लिए सारा जग छोड़कर, ऊंची ऊंची दीवारें। तो हम भी बहुत सी सूक्ष्म और स्थूल दोनों दीवारें तोड़कर बाबा का बने हैं, और अभी कुछ दीवारें तोड़ना बाकी है जो सूक्ष्म है, मैं की, नींद, नींद की, आलस की, गफलत की, गलती की, भूल की, पाप की, पैशन की, भोग विलास की। एक मुरली में बाबा ने कहा इंद्रिय सुख जहर है, जहर की तरह त्याग कर दो। जैसे आज कहा हंसी मजाक को रमणीकता समझ लेते हो, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम वो नहीं है। कड़े शब्द है वरदान में, पांच चीजों को देख कर ही हंसी मजाक हो। अच्छा, तो दूसरा पॉइंट था बेहद, नो नेगेटिव, नो वेस्ट। हर एक को अपने आप से एक प्रश्न पूछना है। हम सोचते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा, मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। डू आई हैव फेथ इन डिवाइन प्लानिंग? क्या मैं डिवाइन प्लानिंग को डाउट कर रहा हूं? ड्रामा शब्दों को थोड़ी देर के लिए बाहर रख दो। जो शब्दों को कई बार प्रयोग किया जाता है उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। अब नया शब्द आपको दे रहे डिवाइन प्लानिंग। क्या मुझे डिवाइन प्लानिंग पर विश्वास है? मैं सोचता हूं मेरे जीवन के ये 5 साल एकदम ही खराब चले गए, बहुत संघर्ष में गए, अभी ठीक चल रहा है, तो क्या ये ड्रामा पर निश्चय है? ये शब्द ही हटा दो। क्या ये डिवाइन प्लानिंग पर मेरा फेथ है? जो हो रहा है उस फाइनल प्लान के अनुसार हो रहा है, और जिसमें मेरा परम कल्याण समाया हुआ है, अकल्याण हो ही नहीं सकता। जो कुछ हुआ और जो हो रहा है और जो दूसरे कर रहे हैं, सब परफेक्ट है, ऐसा ही करना चाहिए उनको। जो हो रहा है वही सत्य है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा। बाप को ये ड्रामा पसंद है? कितना पसंद है? बहुत। और तुमको भी थोड़ा कम। कुछ कुछ सीन ठीक है, कुछ कुछ सीन तो एकदम ही होने ही नहीं चाहिए थे, डिलीट, ये सीन से डिलीट कर दो। कुछ कुछ सीन एकदम खराब है इस ड्रामा के। बाबा की तरफ अर्जी हमने डाल के रखी है, अगर ये डिलीट हो जाए तो बहुत अच्छा। तो दूसरा है बेहद, पहला है वृत्ति, शुभ भावना, शुभ कामना। दूसरा है बेहद, नो नेगेटिव, नो वेस्ट। दूसरों के प्रति वेस्ट सोचना हमारा टाइम वेस्ट है। हमें इन संकल्पों से महान कार्य करने हैं, हमें संकल्पों से सृष्टि को परिवर्तन करना है। पहली पॉइंट में और एक बात है जो अमित भाई ने बताई, वृत्ति से जब चाहो जहां चाहो किसी भी आत्मा तक पहुंच सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। यहां बैठे हैं और यहां बैठे बैठे ही यदि संकल्प संपूर्ण एकाग्र हो जाए, हम उस आत्मा को देखेंगे और उससे बात करेंगे। ऐसी बात करेंगे कि जैसे वो सम्मुख खड़ा है और वो हमारी बातों को सुनेगा, हम आदेश जो करेंगे वो मानेगा। पर उसके लिए संकल्प इतने शुद्ध, पावरफुल, प्योर चाहिए। संकल्पों को कैच कर सकेंगे, विचारों को कैच कर सकेंगे, अंतिम अवस्था हमारी एक है थॉट रीडर की, हम थॉट रीडर बन जाएंगे। कितने साधु संतों के जीवन में दिखाया है, उनके सामने कोई आ रहा है वो तुरंत जान लेते हैं ये कौन है, उसके मन में क्या चल रहा है। महाराष्ट्र के एक संत थे तुकाराम, उनके गांव में एक दूसरे संत आते और सारे लोगों में इतना उल्लास, जोश कि नए संत आ रहे हैं। लोगों की तो यही होता है ना, नया आ रहा मतलब चलो उसके पीछे भागो, उसके लिए बड़ा सा स्टेज बनाया जाता है, उसका स्वागत सत्कार किया जाता है और वो अपने ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं। और वो बहुत कम ही आंख खोलते हैं, केवल दक्षिणा जब दी जाती है तब बस, बाकी नहीं, बाकी वो हाथ रख देते हैं। और जो भी आता है उसकी ख्याति इतनी पहुंच चुकी होती है कि वो आया और गांव में ऐसी घोषणा हो जाती है कि जो भी उनके पास जाएगा और जिसकी जो इच्छा है वो पूरी होगी। तो लोग अपने चले, बच्चा दे दो, पत्नी दे दो, घर दे दो, संपत्ति दे दो, संसारी व्यक्तियों की यही इच्छाएं होती है। और वो सबके ऊपर हाथ रख के सुनते थे और आंख नहीं खोलते थे, कभी कभी आंख खोलते थे बस दक्षिणा बाजू में। तो ये भी जाते हैं तो कोरा महाराज और वहां बैठ जाते हैं उनके सामने जाकर, तो वो कई देर तक आंख बंद करके बैठे रहते हैं, उनको आवाज ही नहीं आता है, सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो आंख खोलते, तुमको क्या चाहिए, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? वो कहता है नहीं मैं बोल इसलिए रह रहा था क्योंकि मैं मन में सोच रहा था कि आप यहां जब आए तब क्या सोच रहे थे, मैं तो आपको देख रहा था, मैं ये देख रहा था कि आप सोच रहे हो कि अभी मेरे पास इतने पैसे जमा हो रहे हैं, अच्छा हुआ मैं इस गांव में आ गया, इस गांव के लोग बहुत श्रद्धालु हैं, अब इस पैसों से मैं एक बड़ा सा घर लूंगा और फिर कब तक इस तरह मारा मारा घूमते रहूंगा इस गांव से उस गांव, ऐसा एक बड़ा सा आश्रम खोल दूंगा, ऐश आराम की जीवन बिताऊंगा। वो कहता है मैं ये देख रहा था आप क्या सोच रहे हो। तो चुप्पी हो जाता है, दूसरे दिन चुपचाप गांव से बाहर। सारे साधु योगी तपस्वी जो हुए हैं ऐसे महान, उनके पास सामने वाले आत्मा के संकल्प रीड करने की पावर थी, कौन किस भाव से आ रहा है, अच्छे भाव से बुरे भाव से, सामने आत्मा आई कि उसको देखना और उसके संकल्प रीड कर लेना, समझ लेना, ये पावर। रामकृष्ण परमहंस के पास कोई आके आते थे, कई लोग भक्त वो परेशान हो जाते इन भक्तों से क्योंकि उनकी सांसारिक इच्छा है। कुछ कुछ भक्त आते थे, बैठते थे, वो जाने के बाद वो कहते थे एक फावड़ा लो और वो जो जमीन है ना उसको उखाड़ के वो जमीन को फेंको, मिट्टी को, क्योंकि वो किस भाव से आया, उसके संकल्प ठीक नहीं थे, वो जमीन को हटा दो वहां से। उनके पास लोग साधु संतों के पास तो जाते ही है ना गृहस्थी, नए नए भोजन लेके जाएंगे, व्यंजन लेके जाएंगे, खुश करेंगे उनको, प्रसन्न हो गए तो फायदा है। वो सबका नहीं खाते थे, किसी किसी का खाते थे और कुछ ही कुछ को बोलते थे ये जो है ना ये मैं नहीं खाऊंगा, वो नरेंद्र को बुला उसको खिला दो, उसको कुछ भी डाइजेस्ट हो जाएगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं टच नहीं करूंगा क्योंकि ये लाया हुआ है, बहुत सारी इसमें कामनाएं भरी हुई है, ऐसे कामना वाला भोजन मैं नहीं खा सकता क्योंकि वो खाया मतलब उसकी इच्छाएं पूर्ण करनी पड़ेगी फिर। उसको कुछ नहीं होगा, आ गए वहां वैराग की, सब भस्म हो जाएगा वहां पर। तो दूसरी बात है बेहद, नो नेगेटिव नो व्यर्थ। तीसरा है वैराग। यज्ञ के शुरुआत का उदाहरण दिया बाबा ने, यज्ञ के शुरुआत में भी साधन कम नहीं थे परंतु 14 साल की भट्टी थी और 14 साल की तपस्या थी, कम से कम 14 दिन की तो हम करें, 14 दिन की भट्टी अपनी एक व्यक्तिगत जिसमें बैठा योग 4 घंटे के ऊपर हो, बाकी चलता फिरता जो होगा वो होगा, उसकी गिनती नहीं कर रहे हो, वो बोनस एड ऑन, परंतु बैठा 4 घंटे के ऊपर हो जिसमें एकांत का पीरियड योग को छोड़कर कम से कम 2 घंटा हो, जिसमें मौन कम से कम 4 घंटा हो योग को छोड़कर। क्या बिना साधना के तपस्या के कोई योगी बन सकता है? भोग और विलासिता में डूबा हुआ चित्त कहां संसार की सेवा कर पाएगा। हां वाणी से सेवा कर पाएगा जरूर, पर वाणी में बल भी तो चाहिए। जोहर तप से आएगा, जब तक हम में वैराग नहीं तब तक संसार की आत्माओं को सुख और शांति मिल ही नहीं सकती। परेशानी से कोई नहीं छूट सकता, हमारे अंदर वैराग क्यों नहीं? बाबा ने कहा साधनों को जरूर यूज करो, परंतु दिल में वैराग वृत्ति धारण कर साधनों के वशभूत ना होकर साधनों का प्रयोग करो, नहीं तो ये साधन जकड़ लेंगे। आग की तरह है, जला भी सकते हैं घर को तो रोटी भी बना सकते हैं, दोनों काम कर सकता है। जलाएगा ऐसा भस्मीभूत, राख रहेगी राख, परंतु रोटी भी ऐसी स्वादिष्ट बना सकता है कि जिसमें चिंतन श्रेष्ठ हो सकता है। इसका आधार से तो वैराग को हृदय में उत्पन्न करना है, चीजों को देखना है और उनके दोष को देखना है। जो चीज छोड़नी है उसकी लिस्ट निकालनी है, क्या दोष है उसमें। जो संबंध दुख दे रहा है उस संबंध की निगेटिव साइड देखना है और उससे दूर हो जाना है। व्यक्ति को के प्रति निगेटिव नहीं, परंतु जो संबंध में मोह है वो विकार है, उसको हटाना है। तो वैराग एक ही तपस्या और एक ही साधना है, कौन सा? बेहद का वैराग। कितनी अच्छे वाक्य है, एक ही तपस्या है और एक ही साधना है, बेहद का वैराग। जो आत्मा चिपकी हुई है संसार से और पूछती रहती है बताओ तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें, बाप समान कैसे करें बने, इस तरह के प्रश्न पूछते हैं लोग, और अपने घर परिवार गृहस्थ सबसे चिपके हुए हैं, कहां से साधना होगी और कहां से तपस्या होगी? तपस्या के लिए, घोर तपस्या के लिए तो तथकता वैराग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए यहाँ का, न पद चाहिए न पोजीशन, सब मिट्टी है, सब व्यर्थ है। वो रामकृष्ण परमहंस तीन चीजें रखते थे, मिट्टी पैसे और सोना, और प्रैक्टिस करते थे तीनों एक ही है, ये तीनों ही एक ही है। चौथा आग, लगन की आग, तपस्या की आग, पावरफुल योग। क्या पावरफुल योग का अगर हम सोचे हमें लास्ट कब एक्सपीरियंस हुआ तो ढूंढना पड़ेगा लास्ट पावरफुल अमृत वेला। शक्तिशाली योग, संसार में भी आग लगी है, कौन सी? भ्रष्टाचार और अत्याचार की। एक फोटोग्राफर स्कूल में जाता है, हेडमास्टर ने बुलाया हुआ है, सभी बच्चे जो है स्कूल के उनकी फोटो ली जाती है ना बीच बीच में, साल में एक बार, तो फोटो लेने के लिए, तो वो कहता है कि 20 रुपए हर एक बच्चे से लूंगा। हेडमास्टर कहता है बिल्कुल नहीं, 10 रुपए में होती है फोटो, तो 10 रुपए देंगे हम, एक एक बच्चा 10-10 रुपए देगा। तो आखिर मान जाता है, हेडमास्टर टीचर को बुलाता है और कहता है कि सभी स्टूडेंट्स को कह दे कल 20 रुपए लेके आए एक एक स्टूडेंट फोटो के लिए। टीचर सोचता है फोटो तो 10 रुपए की है, ये 20 रुपए कहता है। वो स्कूल में जाता है और बच्चों से कहता है कल तुम सब की फोटो लेने वाला फोटोग्राफर आने वाला है, 50-50 रुपए सब ने लेके आने आए। बच्चों को भी पता है कितने रुपए की फोटोग्राफ है, वो कहता है ये हमको बना रहा है। बच्चा घर जाता है, माँ से कहता है मम्मी कल हमारे स्कूल में फोटो है, मुझे 100 रुपए चाहिए। मम्मी कहते 100 रुपए? सब बनावट है, सब झूठ है। और फिर पिताजी आते हैं, मम्मी कहती है कल टिंकू के स्कूल में फोटो है, 200 रुपए मंगाए हैं। भ्रष्टाचार से तो समाज, संस्थाएं और घर भी नहीं छुटा है, सब जगह। तो बाबा ने कहा आग लगी है भ्रष्टाचार की और अत्याचार की संसार में। हमारी जो आग है वो दो काम करेगी, एक तो इस आग को समाप्त करेगी और दूसरा परमात्मा प्रेम और परमात्मा संदेश और शीतलता का अनुभव आत्माओं को कराएगी, ये काम करेगी। तो योग को क्या करना है, ज्वालामुखी। योग को क्या करना है, पावरफुल। उसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा ताकि जल्दी उठो, ताकि जल्दी बैठो, ताकि पावरफुल तपस्या हो, ताकि उससे कनेक्शन छूट जाए, ताकि इसमें प्यार भर जाए ईश्वरीय, ताकि संसार विराग ईश्वर अनुराग हो जाए। ये तो भागता है ना मन, उसकी गर्दन पकड़कर उसको पानी में डूबना पड़ेगा परमात्मा प्रेम की। किसकी गर्दन? मन की। मन भागना चाहता है, ये भी देख लो, वो भी देख लो, वो भी देख लो, वो भी देख लो, इधर देखो, उधर देखो, इधर देखो, इसको देखो, उसको देखो, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। तो उसको ऐसे पकड़ना और बहुत ऐसे ही कड़क उसको मोड़ के डुबो के रखना है, ऐसे जबरदस्ती। फिर ऊपर उठ के देखेगा कोई है क्या बात करने वाला, फिर से पकड़ना, फिर नीचे, फिर देखेगा कुछ है क्या, कुछ और, इंटरनेट, टीवी, मोबाइल, फिर से तो वैराग आग। फिर पांचवा पॉइंट, तुम्हें दो काम करने हैं। कौन से? किसी ने बताया, योगी बनाना और योग्य बनाना, और दूसरा काम धरनी तैयार करना है। इसके लिए दो चीजें चाहिए, वाणी से तो सेवा करते हो, वृत्ति से करो, सत सत सेवाएं करें। खाली बोल 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 सेवाएं, कोर्स करा रहे, कोर्स करा रहे, प्रदर्शनी समझा रहे, आर्ट गैलरी समझा रहे, घुमा रहे, ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये वो है, आराम से हमने बहुत सेवा कर लिया आज, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, ये कॉन्फ्रेंस वो कॉन्फ्रेंस, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, हमने बहुत सेवा की। भाव क्या था, ऊंची दृष्टि कितनी थी, व्हाट वॉज द इंटेंट, कितना प्योर था इंटेंट, मंशा कितनी पवित्र थी करने के पीछे, या कहीं उसमें मिलावट थी। मेरा भी कहीं नाम आ जाए तो बहुत अच्छा, छोटा मोटा ही छपके आ जाए तो चलेगा, पर आ तो जाए। तो आत्माओं को क्या बनाना है, योगी। पहले सही योगी, फिर योगी। योगी अर्थात जैसे हम योगी है वो योगी बन जाए, जैसे हमारे हृदय में परमात्मा प्रेम है वैसे उनके हृदय में भी परमात्मा प्रेम हो जाए, चाहे उनको लोग कितना भी रोके फिर भी वो आए, वो होगी हमारी सेवा की सफलता। जबरदस्ती वाला नहीं, वो योगी बन जाए, आत्मा जाग जाए, जागरण हो जाए परम अंदर से, तपस्वी बन जाए सीधा, वैराग हो जाए आत्मा में, ये है सेवा। खाली कोर्स करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, ज्ञान में आ गए, ज्ञान में चल रहे, मुरली सुनते हैं, मुरली सुनकर जाते हैं, तो ठीक है, सहयोगी तो बन गए। पर ज्ञान में आने के बाद उन ज्ञान में आने के वालों में से योगी कितने बने, उसका स्टैटिस्टिक्स, उसकी एक स्टडी होनी चाहिए। ये है, 1 लाख आए प्रोग्राम में, कोर्स करने आए 500, उसके बाद में रेगुलर हुए 100, और उन 100 में से अब योगी कितने हैं? दो भी ज्यादा बताए, योगी तो बहुत रेयर होते हैं। दो सेवाएं, फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ, हल्कापन। छठवां पॉइंट, हल्कापन। दृष्टि वृत्ति कर्म में हल्कापन दिखे। कोई ये कहे कि हम ये नहीं कह सकते इन्होंने मुझे पहचाना नहीं, अपने विल पावर से उनको पहचान दो। 90% आत्माएं हमसे क्या हो, हमें समझे, दिल पसंद, उसके लिए सहनशीलता धारण करो। 5% ने तो कसम खा के रखी है, तुम जो भी करो तुमको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, कितना भी अच्छा व्यवहार करो, जो करो, उन्होंने प्रण ले रखा है। कौन सा? कि तुमको सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं देंगे हम। हम तुमसे असंतुष्ट हो है और रहेंगे हमेशा। सेवा ऐसी की, ऐसी क्यों नहीं की, वैसी क्यों की? ये तुमने गलत किया, वो तुमने गलत किया, ये तुमको नहीं आता, वो तुमको नहीं आता, उन्होंने कसम खा रखी है। कौन सी? सर्टिफिकेट देने की। कौन सा सर्टिफिकेट? डिससेटिस्फेक्शन का सर्टिफिकेट। हम तुमसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। यू आर ऑलवेज रॉन्ग। तो वो 5% की छूट है, बाबा ने कहा, परंतु वो असंतुष्ट अपने कारण से, हमारे कारण से नहीं। 95% दिल पसंद हो और हम हल्का रहे, भारीपन नहीं आना चाहिए इधर। काम कर रहे, सेवा कर रहे और इतने भारी हो गए कि फिर वो भारीपन में योग ही नहीं लगता। ना ज्ञान का चिंतन होता है, किसी को कहो ये ज्ञान का चिंतन करो या इतना याद करो, अरे बाप रे, याद वो तो छोड़ो, चिंतन भी नहीं। तो सिक्स्थ पॉइंट है हल्का। इसके लिए अपने आप को ढूंढना है, कैसे मैं हल्का रहूं, कौन सी चीज है जो आके भारी कर जाती है। कोई फीलिंग ज्यादा आ जाती है, किसी ने कुछ कह दिया है, तुम ऐसे मत बैठो, चलो उधर बैठो, चलो चेयर खाली करो, इस लाइन में कैसे आगे तुम्हें, बाहर, आउट, कठोर शब्द और ब्राह्मणों के मुख से सीधा इधर आ। अब किसको बताए? सुबह मुरली में बाजू में बैठा था, जब मुरली चली थी, तुम्हें बहुत मीठा बोलना है। अब वही विकराल रूप, क्या ज्ञान समझाओगे उसको? ज्ञानियों से होने वाला डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब नहीं करता, पर ज्ञानियों से होने वाला डिस्टर्बेंस घायल ही कर देता है, सीधा धराशायी हो जाती है, चारों खाने चित्त, उठने का नाम ही नहीं रहती, क्या करना है पुरुषार्थ, अब जाने तो छोड़ो, यह परिणाम। सेवेंथ पॉइंट, गिफ्ट गिविंग। जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाए, दृष्टि से दो, वृत्ति से दो, दिल के मुस्कुराहट, दिल के मुस्कुराहट से। ये दिल की मुस्कुराहट क्या होती है, चिंतन का विषय, इस पे ऊपर सोचना। दिल ना प्लास्टिक स्माइल ना हो, सुपरफिशियल, आर्टिफिशियल, कृत्रिम स्माइल ना हो, दिल की मुस्कुराहट से, दृष्टि से, वृत्ति से सेवा करना, संकल्प से देना आत्माओं को हमारे सामने। जरूरी नहीं है कि हर एक को पकड़ के ज्ञान, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, जब तक सुनता नहीं तब तक पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं। आर्ट गैलरी में आया है, पकड़ो और पूरा उसको सुना दो, आत्मा से लेके परमात्मा और ये ब्रह्मा और शिव बाबा आए हैं, संगम युग है, बिल्कुल ये किताब है, ये सेंटर का एड्रेस है, वो जरूर जाना वहां पर, फोन नंबर दो तुम्हारा, बाप रे घबरा जाता है वो। ऐसी बेरहमी से रहम करते कुछ कुछ ब्राह्मण, बेरहमी से रहम। अभी अभी वो आया है, कहां से? पांडव भवन से जाके, वहां पर भी सबने सिखा दिया, पर हमारे पास आया, हमारे पास तो नहीं आया ना, हमारे पास अभी आया, हम अपना कल्याण बना करके रहेंगे, मुझे प्रजा बनानी है, जाओगे कहां तुम? पकड़ो उसको, चलो, ये आत्मा, ये परमात्मा, ये लक्ष्मी नारायण, सतयुग, वो नाव है ना उधर आर्ट गैलरी में, एक व्यक्ति नाव के नीचे है और उधर कोई खींच रहा है और वो ऊपर जा रहे हैं, चलो भगवान आ गया है, जागो अब तो। वो ऐसे अवाक, पर ऐसे उसको सुनाते एक घंटे में सारा पिला देते हैं कि अगर ये मिला भी नहीं तो ये प्रजा तो जरूर बन जाएगी, इसके बाद मिले ना मिले तुम जाओ भले।
ऐसी भयंकर ऐसी आग है ज्ञान सुनाने की, छोड़ेंगे नहीं उसको। और वो बेचारा ऐसा भागता है, ऐसा भागता है कि फिर पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। ये आ गए आत्मा परमात्मा वाले। हम एक गांव में जाते थे, एक बुजुर्ग थे हमारे पास, जैसे ही जाते थे लोग कहते थे देखो ये आ गए आत्मा परमात्मा वाले। ओम शांति वाले, आत्मा परमात्मा वाले। तो सेवेंथ पॉइंट है देना। किससे देना? संकल्प से देना, आत्मा को दृष्टि से दे देना। हमारी दृष्टि इतनी पावर है कि किसी को दृष्टि दे दे तो कपाट खुल जाए बुद्धि के। दिल की मुस्कुराहट से देना, संकल्प दृष्टि और दिल की मुस्कुराहट से, तो कोई भी खाली हाथ ना जाए। जिसको जो चाहिए जो वो दो, जो जे वांछील तोते लाहो प्राणी जात, जिसको जो चाहिए वो दे दो हर प्राणी मात्र को। और लास्ट पॉइंट और एट्थ पॉइंट, प्रेम। सारी दुनिया तुमसे क्रोध करे पर तुम कौन हो? प्रेम के सागर, मास्टर स्नेह के सागर हो। बेपरवाह हो जाओ, वो क्या कहते हैं, प्रेम देते रहो। उसके लिए अंदर प्रेम भरना पड़ेगा। जितना उससे प्रेम, उसकी रचना से उतना प्रेम होगा। उसकी रचना से प्यार कम है इसलिए क्योंकि उससे प्यार कम है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक जगह लिखा है, लिखा था कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, तुझे स्वीकार करता हूं, पर तेरी ये दुनिया मुझे स्वीकार नहीं है। बहुत कटु अनुभव लिए होंगे जीवन के, तो इसलिए उसने लिखा कि तुझे तो मैं स्वीकार करता हूं पर तेरी ये जो दुनिया है ये मुझे स्वीकार नहीं। और लास्ट में जब बहुत बूढ़ा हो गया, बहुत लंबा समय जिया वो, जब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया तब उसको अनुभव हुआ कुछ और फिर उसने लिखा कि मैंने ये गलत लिखा था। हे प्रभु, यदि मैं तेरी दुनिया को स्वीकार नहीं करता हूं इसका अर्थ मैं तुझे भी स्वीकार नहीं कर रहा हूं। ये यज्ञ उसका है और हम कहे तेरा, हम मुझ मेरा तुझसे प्यार है पर तेरे यज्ञ मुझे स्वीकार नहीं। ये लोग ब्राह्मण, दे आर डेंजरस पीपल। बाबा मुझे तुझसे तो बहुत प्यार है पर ये जो है ना, दीज आर डेंजरस, खतरनाक लोग है ये, इनसे मेरी ये मुझे स्वीकार नहीं है। तो वो क्या कहेंगे, हाँ ठीक है ठीक है। कोई किसी माँ के घर में पड़ोसी आती है और वो कहती है तुम बहुत अच्छी हो तुम, पर तुम्हारा ये जो बेटा है ना बिल्कुल आई हेट हिम, तो वो माँ उससे दोस्ती करेगी क्या? बोलेंगे मेरे बेटे से हट जा उधर। उससे प्यार अर्थात उसके यज्ञ से और उसके परिवार से प्यार, प्रभु परिवार उसने चुना है। तो आठवीं पॉइंट है प्रेम। और लास्ट पॉइंट है, जैसे साइंस वाले रफ को सुंदर बना देते हैं तो तुम भी अब क्या कर दो, निगेटिव को पॉजिटिव कर दो। भावनाओं, व्यर्थ निगेटिव भावनाओं को चेंज कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो, क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। वेस्ट से बेस्ट बना दो, वो वेस्ट से रफ से ब्यूटीफुल बना देते हैं तो तुम भी कर दो। तो ऐसी ये टोटल 9 बातें हैं। पीछे से चालू करते हैं, 9 वेस्ट, रफ को सुंदर ब्यूटीफुल। तो हमारे अंदर कौन सा रफ है वो देखना है, कौन सा वेस्ट है उसको चेंज करना है। जैसे वो लोग मशीन में डालते उधर से कुछ अच्छा बन के निकलता है, क्या ऐसे प्रयोग संकल्पों के साथ किए जा सकते हैं? एक आठवा प्रेम। प्रेम से हृदय को भरना है। साधु संत योगी सबको सताया गया, समाज ने सबको बहुत सताया और उनके पास कौन सा संदेश था? प्रेम का, फिर भी सताया। और सताने वालों के प्रति भी प्रेम का भाव था उनके मन में, कभी उनके मन में घृणा उत्पन्न नहीं हुई। जिन्होंने सबसे ज्यादा सताया उनके लिए तो ज्यादा से ज्यादा प्रेम था। वो कई कई राम से कहती है, राम कम से कम मुझे डांटो तो सही,
कुछ बोलो तो सही। वो कहता है मुझे बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, सबसे ज्यादा प्यार तो उसी से, सबसे पहले वो उसके ही चरणों का स्पर्श करता है कई कई, अपनी मां बाद में। सातवां गिफ्ट देना, लक्ष्य रखना है जो आए मुख से बहुत सुना दिया, हमारे वाइब्रेशंस भी तो कुछ है कि नहीं है, हम है खड़े बस, दैट इज इनफ, हम किसी को कुछ ना सुनाए, बस खड़े हैं, देखो ये है उसकी रचना, बस हम खड़े और कुछ नहीं किया। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशय, मौन का ही व्याख्यान है और संशय दूर हो रहे हैं। कुछ ना किए, कुछ ना कहे, कुछ ना कहकर सेवा करनी, कुछ ना बोलते हुए सेवा करना, तो आत्माया के पूछे वो दूसरी बात है। फिर आगे छठवा हल्कापन, जिस चीज ने भारी किया है उसका अन्वेषण, उसका संशोधन, उसका रिसर्च और उससे मुक्ति का मार्ग खुद ढूंढना है। कोई दूसरा हमारा डॉक्टर नहीं बन सकता है, फिजिशियन हील थाई सेल्फ, हे चिकित्सक तुम हो, हे चिकित्सक स्वयं को स्वयं ठीक करो। पांचवा दो काम, योगी बनाना है आत्मा को और योग्य, और जो योगी बन जाएंगे स्वतः योग्य बनेंगे। दूसरा काम धरनी को तैयार करना है, धरनी पर बीज डालने हैं। किस धरनी पर? एक स्थूल धरनी और एक मन की धरनी पर, आत्माओं के मन की धरनी पर अमृत वेले बीज खेती करनी है। शुद्ध पावरफुल संकल्पों के बीज डालकर आ जाना, कितनी किसके पास एकड़ जमीन है देख लेना, आज इस जमीन पर जाएंगे इतनी आत्माएं वहां है, बीज डाल दो और आ जाओ, खत्म, अपने आप वर्षा होगी परमात्मा प्रेम की और फसल लहलाएगी। एक दिन चौथा आंख, योग के चार्ट को बढ़ाना है। 14 साल की भट्टी अर्थात हमारी 14 दिन की तो हो, आज कौन सी तारीख है, 30, कल से चालू 31 से तो 13 तक, 14 डेज। हर एक को अपनी पर्सनल व्यक्तिगत तपस्या भट्टी, मौन भट्टी करनी है। अगला तीसरा वैराग, बिना वैराग के दूसरों को सुख शांति नहीं मिल सकती और सबसे मुख्य हमको भी नहीं मिल सकती, और बिना वैराग के हम खुद भी परेशानी से मुक्त नहीं हो सकते। दूसरों को तो छोड़ो, हम भी कहां मुक्त हो सकेंगे, क्योंकि हमने पकड़ के रखा है चीजों को, छोड़ो तो छूटो, पकड़ के रखा है, छोड़ते ही राहत आराम। एक चील है जिसने कोई मांस का टुकड़ा ले लिया, उसके पीछे बाकी सारी चील भाग रही है, उसके पास मांस का टुकड़ा है, इस चील को लग रहा है ये सब चील मेरे पीछे क्यों है, उसने इस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया और जैसे छोड़ा ये सारी बाकी चील उस टुकड़े के पीछे, और ये आराम से शांति से अब बैठी, छोड़ा और इंस्टेंट हैप्पीनेस। परंतु छोड़ने की छाती, साहस, शौर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ करना है। दूसरा बेहद नो नेगेटिव, नो वेस्ट, और पहला शुभ भावना, शुभ कामना से भरी हुई वृत्ति। तो ऐसी ये 9 बातें हैं मुरली से। अच्छा, ओम शांति।